शांति। एक दिन सेठ करोड़ीमल अपने घर के कोर्टयार्ड में घूम रहे थे, कुछ विशेष विषय को लेकर के। तभी उस समय उनके जो मुनीम थे वहां से गुजरते हैं तो देखते हैं कि सेठ जी कोई विशेष चिंता में डूबे हुए हैं। तो उसको जानने के लिए उन्होंने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ नुकसान हुआ, क्या कोई बड़ी घटना घटी। तो सेठ जी ने मुनीम से कहा कि आप एक काम कीजिएगा, वर्तमान समय हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितना खजाना है, उसके बारे में हमको पूरा रिपोर्ट दो। तो मुनीम ने सब कुछ हिसाब किताब लगा करके सेठ जी को बताया कि सेठ जी आपके पास तो इतना खजाना है, इतनी संपत्ति है कि आपकी 6 पीढ़ी खा सकती हैं बिना कुछ कमाए। तो सेठ जी के मन में ख्याल आया कि बस केवल 6 पीढ़ी तक, उसके आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। और सेठ जी को वो बात उनके मन में घर कर गई। उसके बाद सेठ जी उसी चिंतन में रहने लगे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, मन में केवल एक ही सवाल कि 7वीं पीढ़ी का क्या होगा। और सेठ जी का चिंतन इतना प्रगाढ़ हो गया, जो वो चिंतन उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगा। और कुछ समय के बाद सेठ जी शरीर से बीमार हो गए। काफी कुछ इलाज कराने के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो रहे थे। तभी उनके एक दोस्त को ये समाचार मिला कि सेठ जी बहुत अस्वस्थ हैं और उसका कारण उनके कुछ कोई चिंता विशेष चिंता है भविष्य की चिंता को लेकर के। तो वो सेठ जी से मिलने आए, उनसे समाचार पूछा और सेठ जी को कहा कि मेरे पास एक विधि है, एक तरीका है, यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो जो आपकी बीमारी है उससे आप बाहर निकल आएंगे। तो उसने कहा क्या तरीका है, कौन सी विधि है बताइएगा। तो उसने कहा कि आप रोज सवेरे किसी एक भिखारी को भोजन करा दीजिएगा करे कुछ दिन तक। सेठ ने कहा ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। तो अगले दिन सेठ जी भोजन की थाल लेकर के घर से बाहर निकले भिखारी की तलाश में। तो सामने से एक भिखारी आ रहा था, सेठ ने उसको बुलाया और कहा कि लो भाई, मैं आपके लिए ये भोजन लेके आया हुआ हूँ। भिखारी बोला नहीं, मुझे भोजन नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं मैं आपके लिए खास बनवा के लाया हुआ हूँ। बोला सेठ जी मुझे नहीं चाहिए ना, क्योंकि मैं तो भोजन अभी करके ही आ रहा हूँ और अपने घर लौट रहा हूँ। तो सेठ जी बोलते हैं कोई बात नहीं, आज कर लिया ये कल के लिए रख लो, कल आपके काम आएगा। भिखारी बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोला क्यों? बोला जैसे भगवान ने आज मुझे खाने के लिए दिया है, मेरी व्यवस्था की हुई है, उसी प्रकार से कल भी वो करेगा, मुझे उस पर विश्वास है, मुझे कल के लिए नहीं रखना है। तो जब सेठ ने ये बात उसकी सुनी तो सेठ के मन में वो विचार चला कि एक फकीर, एक भिखारी जिसके पास कल के लिए भी कुछ नहीं है और वो इतना निश्चिंत जीवन जी रहा है, और मेरे पास तो इतनी संपत्ति है कि 6 पीढ़ी भी बिना कुछ किए बिना कमाए भी खा सकती है, चल सकती है, और हम फिर भी चिंता में डूबे हुए हैं। तो मनुष्य का जो मन है, या मनुष्य मनुष्य का मन, उसकी क्या टेंडेंसी है कि हमेशा कुछ ना कुछ व्यर्थ चिंतन में बने रहना, लगे रहना, व्यर्थ सोच, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ विचार हमेशा मन में चलते ही रहते हैं। जबकि उसके सामने बहुत सारे अच्छे अवसर होते हैं, बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, जीवन में बहुत सारा सुख होता है, लेकिन उन सबको साइड करके उसका फोकस हमेशा व्यर्थ पर रहता है। तो संगम युग पर आप हम सभी को यह ब्राह्मण जीवन, सर्वोत्तम जीवन प्राप्त हुआ है। इस जीवन में अथाह प्राप्तियां हुई हैं, क्योंकि प्राप्ति कराने वाला स्वयं भगवान सागर है, दाता है, और वो मानव जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो सब कुछ देता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने मन में बहुत सारी बातों को लेकर के व्यर्थ चिंतन में चलते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस ब्राह्मण जीवन में या मानव जीवन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम व्यर्थ सोच के रूप में, व्यर्थ चिंतन के रूप में अपने मन में उनको चलाते रहते हैं, जिससे हमारा शारीरिक मानसिक नुकसान होता है, जिससे हमारा समय बर्बाद होता है, जिससे हमारी जो एनर्जी होती है जो हम योग बल से या पुरुषार्थ से जो हम कमाई जमा करते हैं, शक्ति जमा करते हैं, वो भी छीण हो जाती है। तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके प्रति हमारी व्यर्थ सोच चलती है, तो उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, और उससे हमें मुक्ति पानी है, उससे हमें वैराग्य लाना है। क्योंकि जब तक उस बात से हमारे में वैराग्य नहीं होगा, तब तक उससे हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि उसको हमें पहले जानना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन पर हमारा व्यर्थ चिंतन चलता है, व्यर्थ सोच चलती है, तो सबसे पहली बात है संकल्प के रूप में व्यर्थ। मनुष्य का मन या मनुष्य के संकल्प तीन बातों पर हमेशा ही चलते रहते हैं, या पास्ट के बारे में व्यर्थ संकल्प, या भविष्य के बारे में, और वर्तमान में भी जो बहुत सारी बातें होती हैं जो उसको पसंद नहीं होती हैं उनके बारे में भी अनेक प्रश्नों के रूप में व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। तो पहली बात है कि पास्ट के जो बातें हुई हैं, जो हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना, ऐसे दृश्य आते हैं, ऐसी बातें होती हैं जो उसको पसंद नहीं थे, उसके खिलाफ बातें भी हुई हैं, जिन बातों से उसका नुकसान हुआ है, जिन बातों से उसके दिल को ठेस पहुंची है, उसके दिल को दुख मिला है, जिन बातों से वो हताश हुआ है, निराश हुआ है, उसके जीवन में कई समस्याएं खड़ी हुई हैं, तो वर्तमान समय भी वो पास्ट की उन बातों को लेकर के उनके चिंतन में खोया रहता है कि हमारे जीवन में हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी, फलाने फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। तो पास्ट की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी व्यर्थ बातें हैं, उन व्यर्थ बातों के चिंतन में व्यक्ति लंबे समय तक रहता है। और पास्ट की बीती हुई वो घटनाएं, जैसे कि वर्तमान समय वो घटनाएं चल रही हों या अभी अभी वो घटना घटी हो, इस प्रकार से उस घटनाओं को इमर्ज करके उनको वो अनुभव करता रहता है, जो कि वर्तमान समय के लिए बहुत वो नुकसानकारक हैं, घातक हैं। वर्तमान संगम युग का समय, जो अनमोल समय है, जो श्रेष्ठ कमाई करने का समय है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का समय है, वो समय बर्बाद होता रहता है। तो व्यक्ति एक तो पास्ट के चिंतन में रहता है, जबकि पास्ट में और बहुत सारी बातें, अच्छी बातें भी घटी हुई होंगी, लेकिन उन बातों को भुला करके जो नुकसान वाली बातें थी उन बातों के चिंतन में रहता है। तो पहला चिंतन है कि पास्ट की बीती हुई घटनाओं के बारे में, जो कि दुखदायी घटनाएं थी, उनके चिंतन में रहना। दूसरी बात है भविष्य के चिंतन में। बाबा ने कहा कि आपका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है, भविष्य में जो आने वाला समय है वो समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है, कल्याणकारी समय है, आपका नाम वाला होने वाला है, संसार की आत्माएं आपके आगे लाइन लगाने वाली हैं, आपकी प्रशंसा महिमा करने वाली हैं। लेकिन हम भविष्य के बारे में व्यर्थ चिंतन क्या करते हैं कि आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा, आने वाले समय में पता नहीं हमारे साथ क्या हो सकता है, पता नहीं हम आगे जीवन में कैसे चल सकेंगे। विशेषकर बाबा कुमारियों के लिए कहते हैं कि कुमारियां क्या सोचती हैं कि हम आगे चल सके या ना चल सके, सेंटर पर गए और वहां पर सबके साथ एडजस्ट हो सके या ना हो सके। तो बाबा कहते हैं भविष्य की जो व्यर्थ बातें हैं उन व्यर्थ बात चिंतन में ज्यादा रहते हैं, जिसमें हमारा समय वेस्ट होता है। कि भविष्य में जो समय आने वाला है, विनाश का समय होगा, दुनिया में हलचल होगी, उस समय हमारे परिवार का क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हमारे मकान का, दुकान का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों को कौन संभालेगा, तो जो भविष्य की जो चिंताएं हैं, भविष्य का जो चिंतन है वो व्यर्थ चिंतन ज्यादा करते हैं, श्रेष्ठ चिंतन कम करते हैं। जबकि बाबा ने भविष्य के लिए हमें श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें बताई हुई हैं, उन बातों के बजाय हम जो व्यर्थ बातें हैं उनके चिंतन में रहते हैं, तो उससे हमारा समय, हमारी एनर्जी वेस्ट होती रहती है। तीसरा है वर्तमान में वर्तमान का व्यर्थ चिंतन। संगम युग पर हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और हर एक में कोई ना कोई कमजोरियां भी हैं, तो मनुष्य की विशेषता क्या होती है कि दूसरे की विशेषताओं को कम देखते हैं, दूसरे में कोई कमी है, कमजोरी है, या किसी ने कोई गलती की तो उन पर अधिक फोकस रहता है, और फिर क्यों, क्या, कैसे, कब किया, ये कई सारे क्वेश्चन उसके बारे में चलते रहते हैं। ये क्यों किया, किसने किया, कब किया, कैसे किया, तो ये बहुत सारे क्यों, क्या, कैसे के रूप में जो व्यर्थ संकल्प हैं वो चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान के पॉइंट को लेकर के उनके बारे में ये प्रश्न पैदा करो कि ये बात बाबा ने क्यों कही है, इसका क्या रहस्य है, इसका हमारे लिए क्या इसकी उपयोगिता है, इस बात को हम जीवन में कब अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। तो बाबा ने जो हमें चिंतन की विधि बताई हुई है कि कोई भी बात को लेकर के उसके पॉजिटिव चिंतन में रहना, लेकिन हमारा मन क्या करता है या हम क्या करते हैं कि वर्तमान समय जो कई बातें होती हैं, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं तो हर एक आत्मा की कोई ना कोई कमी कमजोरी होती है या कोई ना कोई गलती कर लेते हैं, तो उन पर हमेशा फोकस रहता है कि उसने ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों। तो जब जब ये व्यर्थ के क्वेश्चन चलेंगे मन में उत्पन्न होंगे और मन उनमें रमण करेगा तो इससे क्या होगा, इससे मक्खन निकलेगा या क्या निकलेगा, इसे पॉइजन निकलेगा। जैसे गंदे पानी को मथेंगे तो उससे क्या निकलेगा, उससे बदबू निकलेगी। तो जो भी व्यर्थ चिंतन है उस व्यर्थ चिंतन से क्या होता है, हमारा मन कमजोर होता है, मन की शक्ति छीण होती है। और बाबा कहते हैं जिसका मन कमजोर है वो माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तो संकल्प के रूप में व्यक्ति या पास्ट का चिंतन करता है व्यर्थ चिंतन, या भविष्य का करता है व्यर्थ चिंतन, या फिर वर्तमान में जो बहुत सारी बातें होती हैं उनका व्यर्थ चिंतन करता है। तो इससे भी हमें वैराग आना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा बहुत सारा नुकसान होता है। जो संगम युग का अनमोल समय है, जो 21 जन्मों की कमाई करने का समय है, वो समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। दूसरी बात है बोल। बाबा ने बोल के लिए 14 जनवरी 1990 की एक मुरली में कहा है कि बाप दादा आजकल वाणी अर्थात बोल के ऊपर विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध आपके साथ भी है और सर्व के साथ भी है। इसलिए बाप दादा ने 3 बातें बोल के लिए कही थी। वो 3 बातें हैं, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो, क्योंकि व्यर्थ बोल बहुत हैं। और व्यर्थ बोल की निशानी है कि वह बोलेगा, वह ज्यादा बोलेगा। मजबूरी के समय प्रमाण, संगठन के प्रमाण कंट्रोल करेगा मजबूरी से, लेकिन वह अंदर से ऐसा महसूस करेगा जैसे कि किसी ने शांति में रहने के लिए उसको बाध्य किया हुआ है, उसको बांध कर रखा हुआ है। व्यर्थ बोल से एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त हो जाती है, समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत होगी वह छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करके सुनाएगा, और बात करने का तरीका कथा माफिक होगा। जैसे कथावाचक कोई कहानी सुनाते हैं भारत की, तो बड़ी रुचि सुनाते हैं, उसमें उसको इंटरेस्ट पैदा करके उसको सुनाते हैं। ऐसे ही व्यर्थ बोलने वाले बातों को रमणीक बनाकर सुनाएंगे। व्यर्थ बोलने वाली आत्मा कमजोर होने के कारण माया के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। व्यर्थ बोलने वाली आत्मा एकांत प्रिय नहीं बन सकती। तो ऐसे कौन कौन से व्यर्थ बोल हैं, तो बाबा ने कहा कि सीमा से परे अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, बाबा ने ये बात उसमें कही थी। दूसरे बोले तो बाबा ने कहा कि लिमिट से ज्यादा हंसी मजाक। बाबा कहते हैं कि हंसी मजाक अच्छी वह है जिसमें रूहानियत हो, और जिस आत्मा से हंसी मजाक कर रहे हो उसका उसमें फायदा हो। रमणीकता का गुण अच्छा तब माना जाता जब उसमें पांच बातें हों। अगर किसी के साथ रमणीकता में हम आ रहे, किसी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उसमें पांच बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, व्यक्ति को देखना है कि व्यक्ति कौन है वो। दूसरी बात, समय, वो समय क्या है। तीसरा, स्थान। चौथा, संगठन। और पांचवा, वायुमंडल। यदि इनमें से एक भी बात की कमी है तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। तो बाबा ने कहा कि जो बोल हैं वो आपके बोल ऐसे ना हो जो किसी को करने वाले हों, किसी को देने वाले हों, किसी के उमंग उत्साह को करने वाले हों। अगर ऐसे बोल हैं तो वो बोल भी व्यर्थ के खाते में गिने जाएंगे। तो उससे भी हमें वैराग दिलाना है अपने आप को कि हमें हमारे मुख से कोई ऐसे शब्द न निकलें, ऐसे बोल न निकलें जो अन्य किसी आत्मा को हर्ट करें, किसी के दिल को दुखाएं। तो बाबा ने कहा था कि जो रामायण या महाभारत जो बने हुए हैं वो किस पर बने हुए हैं, व्यर्थ बोल पर, और उसका परिणाम क्या निकला, राम को वनवास और महाभारत का युद्ध। द्रौपदी के दो शब्द, दो बोल ने महाभारत खड़ा कर दिया। तो बाबा कहते हैं आपको, आपके जो एक एक बोल हैं वो अनमोल होने चाहिए। दूसरी आत्माओं में उमंग उत्साह भरने वाले बोल होने चाहिए, ना कि व्यर्थ के बोल। तीसरी बात है व्यर्थ देखना। वर्तमान समय व्यर्थ की बीमारी जो बहुत कड़ी बीमारी है, जो बहुत बड़ा व्यर्थ का सागर है, जंजाल है, वो देखने के ऊपर है। देखना वर्तमान समय टीवी, जो टीवी सीरियल है, फिल्में हैं, टीवी के डिबेट शो जो हैं, उनमें इतना व्यर्थ होता है कि वो व्यक्ति को कहां से कहां ले जाते हैं, व्यक्ति की भावनाओं को बिगाड़ देते हैं, संबंधों में दूरियां पैदा कर देते हैं। समाज में, धर्मों में जो इतनी दूरियां पैदा हो रही हैं, जो आपस में तनाव, मनमुटाव जो बढ़ रहा है, उसका एक कारण है व्यर्थ देखना। तो चाहे फिल्में हैं, चाहे डिबेट शो हैं, या कोई सीरियल है, उसमें नेगेटिविटी है, उसमें कोई सीखने की, कोई समझने की, कोई सुनने की अच्छी बातें नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा व्यर्थ है। तो यदि इसमें रुचि है तो इससे हमारा समय, हमारी एनर्जी बर्बाद हो रही है। तो इसके प्रति भी हमें सजग रहना होगा, और इस व्यर्थ से भी हमें अपने आप में वैराग उत्पन्न करना है कि ये जो भी बातें हैं वो समय को बर्बाद करने वाली बातें हैं, इसमें कोई भी फायदा नहीं है। तो उससे भी अपने आप को छुड़ाना है। थे व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सुनने की बातें। वर्तमान समय हरेक के पास व्यर्थ बहुत है, और सब चाहते हैं कि कोई हमारी बातें सुने। तो यदि हम किसी की व्यर्थ बातें सुनते हैं तो उनका हमारे ऊपर तुरंत प्रभाव पड़ता है। तो व्यर्थ सुनने पर भी हमें अपने आप को रोकना है, अपने आप पर प्रतिबंध लगाना है, अंकुश लगाना है कि जो भी व्यर्थ बातें हैं जो हमें सुना रहा है, हो सकता है उस आत्मा की अपनी मजबूरी हो, उसका किसी के साथ कोई टकराव हुआ हो, मनमुटाव हुआ हो, इसलिए वे दूसरे की बात को लेकर के आपसे शेयर कर रहा हो अपने आप को हल्का करने के लिए, लेकिन वो आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि जिस व्यक्ति की बातें सुना रहा है शायद उससे आपका आपके संबंध अच्छे संबंध हैं, लेकिन यदि हम उसकी व्यर्थ बातों को सुनते हैं तो उससे हमारे मन में भी उसके प्रति नेगेटिव भाव पैदा हो सकता है। इसलिए व्यर्थ बातें सुनने पर भी हमें अंकुश लगाना है, उसको रोकना है। अगला है संबंध और संपर्क के रूप में व्यर्थ। हमारा संगम युग का ब्राह्मण परिवार बहुत बड़ा परिवार है और ये परिवार अभी बेहद में जा रहा है, तो इस ब्राह्मण परिवार में हम अनेकों के संबंध संपर्क में आते हैं, तो अनेकों के संबंध संपर्क में आते हुए हम उनके साथ इतने घनिष्ठ संबंध न बना लें जो कि हम वो संबंध बाद में न निभा सकें और ना ही उनसे हम अपने आप को अलग कर सकें। तो यदि हम इन ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण परिवार में हम संबंधों को बढ़ा रहे हैं तो वो संबंध भी कहीं ना कहीं हमारे लिए व्यर्थ बन जाएंगे, क्योंकि उन संबंधों को निभाने में उनके साथ जो बातें हो रही हैं उन बातों को सॉल्व करने में हमारा समय हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होगी। तो संबंध संपर्क हम ब्राह्मण संसार में रखते हैं, सबके साथ रहते हुए हमें अपने संबंध संपर्क कैसे रखने हैं, न्यारे और प्यारे रह करके सबके साथ आते हुए भी सबके साथ संबंध रखते हुए सबसे बातचीत करते हुए सबके साथ कार व्यवहार में आते हुए भी सबसे न्यारे और प्यारे हो करके रहना। अगली बात है इच्छाएं, संसार की सांसारिक व्यर्थ की इच्छाएं। तो सांसारिक व्यर्थ की इच्छाएं कौन कौन सी है? सांसारिक नामानसान, कि संसार में हमारा भी कुछ नाम हो जाए, हमारा भी कुछ मान हो, संसार की आत्माएं भी मुझे जाने पहचाने, हमारा भी प्रेस्टीज कुछ हो जिससे लोग हमको सम्मान दें, रिगार्ड दें, रेस्पेक्ट दें। तो सांसारिक जो इच्छाएं नामानसान की इच्छाएं कि संसार में हमारा भी कुछ नाम हो जाए, तो बाबा कहते ये भी व्यर्थ के खाते में जाएगा। बाबा ने कहा कि कोई भी सांसारिक इच्छाएं होंगी तो आपको अच्छा बनने नहीं देगी, तो हमारा पुरुषार्थ है कि हमें अपने आप को बाप समान बनाना है, अच्छे से अच्छा बनने का पुरुषार्थ है, संपन्न और संपूर्ण बनने का जो हमारा लक्ष्य है पुरुषार्थ है, उसमें सांसारिक इच्छाएं यदि हमारे मन में पैदा हो रही हैं तो वो सांसारिक इच्छाएं भी हमारे लिए व्यर्थ के रूप में है, जो हमारी एनर्जी को हमारे समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो उन सांसारिक इच्छाओं से भी अपने आप को हमें वैराग्य दिलाना है। अगली बात है साधन। मानव जीवन के लिए जो आवश्यक साधन है उन साधनों के सिवाय और बहुत सारे साधन होते हैं जिनसे हमें कंफर्ट तो मिलता है, थोड़े समय के लिए हमें वो मदद तो करते हैं, लेकिन वो साधन भी कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने में बाधक बन जाते हैं। तो उन साधनों के प्रति चिंतन करना, उनको इकट्ठा करने की इच्छा रखना, योजना बनाना, तरीका ढूंढना कि उन साधनों को हम कैसे अपने पास इकट्ठा कर सकें। कोई एक चीज है लेकिन उसके अलावा भी क्या सोचते हैं कि एक और होनी चाहिए। जो नए नए साधन वर्तमान समय निकलते हैं साइंस के साधन, हर एक की इच्छा क्या होती है कि वो पहले हमारे पास होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि आपके ब्राह्मण जीवन में साधन तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन उन साधनों को इकट्ठा करने में, उन साधनों को यूज करने में, उन साधनों में ही आपकी साधना ना लुप्त हो जाए, क्योंकि उन साधनों को पहले आप इकट्ठा करेंगे तो उसमें भी आपका समय जाएगा, फिर उनको संभालेंगे तो संभालने में भी समय जाएगा, और साथ जब आपको मालूम पड़ेगा कि साधन हमारे लिए नुकसानकारक हैं तो उनको फिर खत्म करने में भी समय जाएगा। तो जो भी साधन हैं, वस्तुएं हैं, उनको इकट्ठा करना, संग्रह करना
फिर उनको संभालना, फिर उनको अपने से अलग करना। तो यदि हम इन बातों में संग्रह करने में बिजी हैं तो ये भी जैसे कि हमारे लिए व्यर्थ है। तो इससे भी हमें अपने आप को मुक्त करना है। समय पर जो जरूरत है वो स्वतः ही मिलता है, और बाबा की गारंटी है कि जिसकी आपको जरूरत है वो बाबा कहीं ना कहीं से आपको दिलवा देगा। लेकिन उसके अलावा यदि आपकी इच्छा है, आपकी तमन्ना है कि हमको कुछ मिले, तो उसके लिए फिर आपका उसमें समय एनर्जी वेस्ट होगी। तो इसलिए जो संग्रह करने की वृत्ति है, जो व्यर्थ है, उससे भी हमें वैराग्य दिलाना है। इसके बाद है व्यर्थ शौक। संसार में मनुष्य आत्माओं को बहुत सारे शौक होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आपका शौक होना चाहिए सेवा का शौक। सेवा के भिन्न भिन्न तरीके रिसर्च करो, उन तरीकों को खोजो और उनके माध्यम से संसार की आत्माओं की सेवा करो। लेकिन हमारा शौक सेवाओं में न होकर के यदि किसी और चीजों में है, कौन कौन चीजों में, खाना पीना, घूमना, गेम खेलना, फोटोग्राफी, यह बहुत सारी बातें हैं जिनमें हमारा समय एनर्जी वेस्ट जा रही है, उन बातों का शौक नहीं रखना है। अगली बात है बाह्यात व्यर्थ बातें, झगमुई झरमुई की बातों से वैराग्य, क्योंकि अफवाहें, क्योंकि जैसे बाबा ने कल या परसों की मुरली में कहा था कि बाह्यात बातें, उसे क्या होता है, उससे आपका नुकसान बहुत होता है। तो यदि बाह्यात बातों में हमारा चिंतन चलता है, जो व्यर्थ बातें हैं, झगमुई झरमुई की बातें हैं, तो उससे भी हमारा समय, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो उनसे भी हमें वैराग्य लाना है। अगली बात है प्रपंच से वैराग्य। जब आपस में कुछ लोग मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो उसमें मोस्टली व्यर्थ की बातें होती हैं, प्रपंच की बातें होती हैं, तेरे मेरे की बातें होती हैं, यहाँ वहाँ की बातें होती हैं, जिनका हमारे से कोई विशेष संबंध नहीं होता, जिन बातों से हमारा कोई फायदा नहीं, उनसे और नुकसान होता है, हमारे मन में व्यर्थ का किचड़ा जमा होता है। तो जो प्रपंच की बातें हैं वो व्यर्थ की बातें, उनसे भी हमें वैराग्य लाना है। दूसरी बात है बिना मांगे किसी को राय देना, किसी को भी एडवाइस देना, तो यह भी एक व्यर्थ के खाते में आता है। क्योंकि संसार के हर एक आत्मा की अपनी अपनी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है उसको अच्छी तरह से मालूम है। यदि नहीं मालूम होगा तो जो योग्य व्यक्ति है उससे वो राय ले सकता है और लेता भी है। लेकिन किसी किसी की ऐसी आदत होती है कि जाकर के दूसरों को बिना वजह से उनको राय देना, एडवाइस देना कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा कीजिएगा, तो यह भी एक व्यर्थ के खाते में जाता है। क्योंकि वो आत्मा जिसके सामने समस्या है, परिस्थिति है, जरूरी नहीं कि वो आपकी बात को अप्लाई करे। तो यदि ऐसे हमारी भावनाएं हैं कि बिना मांगे किसी को एडवाइस देना, तो वो भी उचित नहीं है। कोई हमारे से राय मांगता है, एडवाइस मांगता है, तो जरूर दें, लेकिन बिना मांगे किसी को कोई भी ऐसी एडवाइस न दें। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं, शरीर की बीमारी के बारे में बहुत सारा व्यर्थ चलता है, शरीर ऐसा क्यों, हमको ही ऐसा शरीर क्यों मिला हुआ है जिसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, बाकी सब लोग देखो कितने खा पी करके मौत बना रहे हैं, संगम युग के पूरे सुख ले रहे हैं, और हम हर प्रकार से कंट्रोल किए हुए हैं, फिर भी हमारे शरीर में बहुत सारी व्याधियां हैं, बीमारियां हैं। तो ये भी एक व्यर्थ संकल्प रहने के एक कारण है कि शरीर के बारे में व्यर्थ सोचना। क्योंकि संगम युग पर जिसको जो शरीर मिला वो उसके अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से मिला हुआ है। किसी आत्मा ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, शरीर से सुख दिया होगा तो उसको अच्छा शरीर मिला, किसी ने किसी को शरीर से दुख दिए होंगे या शरीर से कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण शरीर में कोई ना कोई व्याधि, कोई ना कोई बीमारियां हैं, या वर्तमान समय हम कोई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण भी शरीर की कई व्याधियां हो सकती हैं या हो जाती हैं। तो यदि शरीर में कोई बीमारी है, कोई व्याधि है, तो उसके बारे में व्यर्थ चिंतन न चला करके उसके बारे में हमें पॉजिटिव सोचना है कि ये वर्तमान समय शरीर जो हमें मिला है ये कितना बढ़िया शरीर है, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही हम भगवान से मिलन मना रहे हैं, मिलन मना सकते हैं। इस शरीर के माध्यम से ही हम भविष्य 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं, तो ये शरीर बड़ी बलिहारी है। तो ये शरीर के इसके लिए अच्छे संकल्प करना है, इसका गुणगान करना है, इसके बारे में व्यर्थ संकल्प व्यर्थ चिंतन नहीं चलाने हैं। इसके साथ साथ मौसम के बारे में व्यर्थ चिंतन, बाबा ने कहा आपस में मिलना है तो ज्ञान के रूप ध्यान करो, ज्ञान का चिंतन करो। बाबा ने हम सबको अथाह ज्ञान की पॉइंट्स दी हुई हैं, बाबा ने अथाह ज्ञान की पॉइंट्स दी हुई हैं। तो यदि मौसम के बारे में सोचना है तो भविष्य में जो मौसम होगा, सत्योगी मौसम, उसके बारे में सोचिएगा। वर्तमान समय जो मौसम है, इस मौसम को देखते हुए उस मौसम के बारे में सोचिएगा कि वो उस समय मौसम कैसा होगा, क्योंकि वर्तमान समय के मौसम के बारे में हम सोचेंगे तो मौसम तो कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो मनुष्य के मन की एक ये भी विशेषता, ये भी एक कमजोरी है कि वो मौसम के बारे में बहुत सोचता है कि कल मौसम ऐसा था, आज मौसम ऐसा हो गया। मौसम बार बार बदलता रहता है और उससे अपने आप को डिस्टर्ब करता रहता है। तो मौसम के बारे में अधिक सोचना भी ये भी एक व्यर्थ के खाते में जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हमारा व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ सोच, व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। और यदि हमारे मन में लंबे समय तक बार बार उन बातों के बारे में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन चलता है तो इससे हमको बहुत सारे नुकसान होते हैं। पहली बात है कि उससे हमारा मन कमजोर होता है, और जिसका मन कमजोर है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, वो अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि जो हम ज्ञान योग और योग के बल से शक्ति जमा करते हैं वो हमारी शक्ति छीन हो जाती है और हम हताश, निराश, उदास हो जाते हैं। और क्या क्या होता है, लंबे समय तक यदि हमारा व्यर्थ चिंतन है तो इससे हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, मानसिक बीमारियां भी इससे पैदा हो सकती हैं। और ऐसा होता भी है, ऐसा हो भी रहा है कि मनुष्य के जीवन में जो बहुत सारी बीमारियां हैं उसका एक मूल कारण यह है कि उसका चिंतन व्यर्थ है, लंबे समय तक वो व्यर्थ चिंतन में रहा हुआ है। एक अगली बात है कि व्यर्थ चिंतन की आदत से यदि हम बार बार कोई बात के बारे में व्यर्थ सोचते हैं तो उससे हमारी आदत और भी पक्की होती जाती है। बाबा कहते हैं कि यदि आपको वर्तमान समय आपका जो पुरुषार्थ है वो वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ होना चाहिए, लेकिन यदि हम बार बार व्यर्थ सोच रहे तो जहां भी हम रहते हैं वहां का वायुमंडल कमजोर बनता है, तो यह भी इससे एक नुकसान होता है। दूसरी बात है कि संकल्प शक्ति, जो एक महान शक्ति है जो कि इस ब्राह्मण जीवन का एक आधार है, वो संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। तो व्यर्थ सोच से बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्यर्थ से वैराग्य लाना है। तो व्यर्थ से वैराग्य लाने के लिए सबसे पहली बात है कि हमें चेक करना है, देखना है कि हमारे जीवन में व्यर्थ कहाँ से आ रहा है, या जो जीवन में व्यर्थ चल रहा है उसके ऐसे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे घटक हैं जिनके कारण हमारे जीवन में अभी भी व्यर्थ जारी है। तो पहली बात है कि देखना है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं। दूसरी बात है व्यर्थ से मुक्ति के लिए कि हमें स्वीकार करना है, क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं जो हम जीवन में व्यर्थ के रूप में अभी भी अप्लाई कर रहे हैं। हम व्यर्थ में हैं लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं कि हम व्यर्थ में हैं। हमारे मन में व्यर्थ चल रहा है, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमें स्वीकार करना है। उससे मुक्ति पानी है तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, तभी उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तीसरी बात है कि व्यर्थ से क्या क्या नुकसान है, हमें उसके नुकसान को भी देखना है। तो व्यर्थ से जो बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं वर्तमान ब्राह्मण जीवन में, इस श्रेष्ठ जीवन में जो एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का समय है, श्रेष्ठ साधना करने का समय है, वो समय हमारा नष्ट हो रहा है। तो यदि हम व्यर्थ के नुकसान के बारे में सोचेंगे कि इससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है, तो उससे भी हम अपने आप को बचा सकेंगे, उससे मुक्ति पा सकेंगे। अगली बात है कि लक्ष्य मजबूत हो। यदि व्यर्थ चिंतन से हमें अपने आप को मुक्त करना है तो उसकी एक विधि है कि हमारा लक्ष्य बहुत मजबूत हो। लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो व्यर्थ चिंतन चलने का समय नहीं होगा, मार्जिन नहीं होगी। जैसे बाबा ने अभी लास्ट मुरली में या उससे पहले के मुरली में कहा इस सीजन की, कि बच्चे अमृत वेले जब बाप से रूढ़ियान करते हैं, चिंतन करते हैं, बाबा से बातें करते हैं, तो उसमें बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं और लक्ष्य भी अच्छा रखते हैं, लेकिन और पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में किस बात की कमी है? तीव्रता में दृढ़ता की कमी है। पुरुषार्थ है लेकिन उस पुरुषार्थ में तीव्रता में दृढ़ता की कमी है। तो यदि हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ है, लक्ष्य शक्तिशाली है, तो उस लक्ष्य के अनुसार हम चलेंगे, और लक्ष्य के अनुसार यदि हम चल रहे हैं तो हम व्यर्थ से अपने आप को मुक्त कर सकेंगे। और भी ऐसे कोई कौन कौन सी बातें होंगे जिनको हम जीवन में अप्लाई करें तो व्यर्थ से मुक्त हो सकते हैं? हाँ जी, बाबा ने जो हमें बहुत सारी विधि बताई हुई है पुरुषार्थ के लिए, योगाभ्यास के लिए, जैसे कि ड्रिल के लिए बाबा ने कहा कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, तो यदि हम जो बाबा ने बताई हुई विधियां हैं उन विधियों में अपने आप को बिजी किए हुए हैं तो उनसे हम अपने आप को व्यर्थ से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि जब जब हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ में हैं, कोई ना कोई विधि को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारे मन को रस मिलता है, खुशी मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो हमें व्यर्थ से मुक्ति पाने में मदद करती है। अगली बात है ज्ञान का मनन चिंतन, जो बाबा हर रोज की मुरली में कहते हैं कि बाप जो आपको ज्ञान रत्न देते हैं उन ज्ञान रत्नों के चिंतन में रहना। तो जितना हम ज्ञान रत्नों के चिंतन में रहेंगे, उन पर मनन करेंगे, उन पर विचार करेंगे, उनको लिखेंगे, उनको दूसरों को दान करेंगे, तो उससे हम अपने आप को व्यर्थ से मुक्त रख सकते हैं। और बाबा ने हमें बिजी रहने के लिए बहुत सारे सेवा के साधन दिए हुए हैं, तो जो सेवा के साधन हैं, चाहे वाचा सेवा है या कर्मणा सेवा है, और यह सेवा नहीं तो मनसा सेवा तो हमेशा है ही है। तो कोई ना कोई सेवा में अपने आप को बिजी रखें। तो जब हम अपने आप को सेवाओं में बिजी रखेंगे तो जितना समय सेवाओं में बिजी है उतना समय हम व्यर्थ से सोता ही फ्री है। और जब हम सेवा में बिजी होते हैं तो सेवा का जो फल मिलता है, उस फल का जो बल मिलता है, उस बल से भी हम अपने आप को व्यर्थ से मुक्त कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिन पर हमने चर्चा की। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि जीवन में बहुत सारे व्यर्थ होते हैं, यदि वो व्यर्थ हमारे जीवन में है या चल रहा है तो उससे हमें बहुत सारा नुकसान होता है। तो उन व्यर्थ बातों से हमें फ्री होना है, तो हमें व्यर्थ बातों के बारे में पहले सोचना है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में चल रही हैं, उसको स्वीकार करना है, और बाद में जो बाबा ने कई तरीके कई विधि बताई हुई हैं उनके माध्यम से अपने आप को हमें मुक्त करना है। ओम शांति।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा।